आगे जी सूरत लुकमान के बाद सूरत सजदा, दोनों का रब देखिए। सूरत लुकमान में हमने हजरत लुकमान की नसीहतें सुनी जो उन्होंने अपने बच्चों को की। सूरत सजदा में हम मोमिन और फासिक का फर्क देखेंगे, यानी औलाद को समझाना माँ बाप का काम है, फिर उनको हिदायत पे रखना अल्लाह का काम भी है और बच्चों का अपना रुझान भी है। सूरत लुकमान में कुरैश के सरदारों के खिलाफ फर्दे जुर्म थी जो अल्लाह के नबी के सामने आकर बदतहजीबी करते थे। सूरत सजदा में अब इनका इंजाम देखेंगे। और सूरत सजदा तरतीब में 32 नंबर की सूरा, 30 आयतें हैं। आप हैरान होंगे कि सूरत सजदा की भी आयतें 30, सूरत मुल्क की भी 30, और ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़ते थे। महीने के दिन भी अमूमन 30 होते हैं। इस सूरत का थोड़ा सा एक तारुफ ले लीजिए। ये सूरत भी 4 से 5 नबी के बीच के दौर में नाजिल हुई। कुरान पाक के दलाइल पे गौर करके अल्लाह और आखरत को मानो, ये है इसका मेन थीम। आजमाइशों में सब्र करो। फिर इसमें जो मेन पॉइंट है ना, वो मोमिन और फासिक के मुख्तलिफ इंजाम की बात है। कुरानी दलाइल पे गौर करके अल्लाह और आखरत पर ईमान लाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक झूठ था कि आपने ये कुरान खुद लिखा है, तो नबी पर मुफ्तरी होने का इल्जाम है। आइए बाकी बातें सूरत के साथ देखेंगे। और इस सूरत के बारे में हजरत जाबिर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी रात को अलिफ लाम मीम तंजील और सजदा और तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोते थे। ये तबरानी की रिवायत है 967। नियत करते कुछ तो पढ़ते भी होंगे ना, और इसको एक एक आयत करके याद कर लें, इंशाल्लाह जुबानी पढ़ने में फायदेमंद होगी। तो रुकू नंबर 1 है, 1 to 11। हर काम अल्लाह की तदबीर से होता है। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। बिलाशुबह इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है, क्या ये कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिया है? नहीं नहीं बल्कि ये तेरे रब ताला की तरफ से हक है, ताकि आप इन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब कुछ 6 दिन में पैदा कर दिया। गार और सिफारशी नहीं, क्या इस पर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? तौहीद के दलाइल नोट कर रहे हैं आप। वो आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में इसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारी गिनती के 1,000 साल के बराबर है। नोट कर ले, आपका 1,000 साल जब होता है ना, तो अल्लाह के यहाँ वो एक लिखा जाता है। इसीलिए तो कौमों को मोहलत देता है इतनी लंबी लंबी। यही है छुपे खुले का जानने वाला, जबरदस्त गालिब, बहुत ही मेहरबान, जिसने नहायत खूब बनाई जो चीज भी बनाई। मानते हैं? और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी नस्ल एक बेबुक्कत पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें इसने रूह फूंकी। इसी ने तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। न शुक्रपन इंसान का। और उन्होंने कहा कि जब हम मिट्टी में या जमीन में रल मिल जाएंगे, क्या फिर हम नई पैदाइश में आ जाएंगे? बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकिर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। क्या बनेगा जब अल्लाह के सामने जाएंगे और नामे अमाल में लाहौल हदीस भरा होगा? अल्लाह हमें अपनी जिंदगी को आग लगाने से बचा दे। अपनी तख्लीक पे गौर करके अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और क्यामत और दोबारा जी उठने के अकीदे को पुख्ता करना है। फेथ इन एक्शन। रुकू नंबर 2, 12 से 22। नेकी और भलाई के कामों में खर्च करना है। वलौ तराइज़िल मुजरिमूना नाकिसूरूसिहिम इंदा रब्बिहिम। काश आप देखते कि जब के गुनाहगार लोग अपने रब्बे ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे हमारे रब हमने देख लिया और सुन लिया, तो हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि मैं जरूर जरूर जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से पुर कर दूंगा। जरा इमेजिन कीजिए, ऊपर तक भरेगा अल्लाह जहन्नुम को, तन्नूर को जैसे ईंधन से भर दिया जाए। अब तुम अपने इस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मजा चखो। धमकी, हमने भी तुम्हें भुला दिया, और अपने किए हुए अमाल की शामत से हमेशा अजाब का मजा चखो। आप अवन में गोश्त रखकर भूल जाए, कुछ घंटे के बाद उसकी क्या हालत होगी? ذرا سا تصور سے جہنمیوں کا حال سچی ہے وہ کیسے بھون بنا جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی اور اپنی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اور تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں. اللہ ہمیں بھی رات کے کچھ حصے میں اپنے سامنے کھڑا کرتے, اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. رات کی عبادت, رات کا جاگنا بندے کو کیا دے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے. جو کچھ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ تقابل دیکھیے, یہ برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیش کی جنتیں ہیں, مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے, اوپر سے واپس پھینکا جائے گا چلو اندر, اور کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. ایسی آیتیں رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو غفلت کی نیند آئے گی بھلا؟ نہیں, رات کو پڑھتے ہو کہ اس کے ترجمے پہ بھی غور کیجئے گا. بال یقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے باز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ برے انجام سے بچائے. تین آیات بیسیکلی ایمان سے متعلق. 15 سجدہ, مومن اللہ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیتا ہے, اللہ ہمیں مومن بنا دے. 18 سجدہ, اللہ کے ہاں ایمان والوں کے درجات ہیں ان کے اعمال اور کوششوں کے بدلے. سجدہ 19, مومن جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے, وہ اپنی شان کے مطابق ان کی مہمانی کرے گا. یہ جو نزول کا لفظ آیا نا, یہ مہمان کو جو پہلا کھانا کھلایا جاتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے عربی میں. اللہ آپ کو مجھے سب کو اپنا مہمان بنا لے. فیتھ ان ایکشن, قیامت کے دن اپنے اعمال پر پچھتانے کی بجائے دنیا میں ہی اپنے اعمال درست کرنے ہیں. عاجزی اختیار کرنی ہے, خود پسندی اور غرور نہیں کرنا. اپنے رزق میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے رکو نمبر 3, 23 سے 30, آخری رکو ہے سورت کا. پچھلی قوموں کے انجام سے سبق, یہ بھی آیات ہسٹری کی اور ماضی کے واقعات سے دکھانے کی ہمیں دلیل ملتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اے اللہ اس قرآن کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ایسے لیڈرز یعنی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. آپ کا رب ان سب کے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کیا اس بات نے بھی انہیں کوئی ہدایت نہیں دی؟ ذرا انداز دیکھیے, پروکنگ سٹائل ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں, اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں, کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں, پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں, کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. بے یقینی کی حد ہے, کہتے تھے قیامت کب آئے گی, لا کے دکھاؤ بلا. بے بس کرنا چاہتے تھے نبی کو. جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نئے نئے ڈھیل دی جائے گی. اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں, یہ بھی منتظر رہیں. دھمکی ہے. ایک آیت ایمان سے متعلق, 29 سجدہ, نتیجے کے دن اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا. جیسے دنیا میں امتحان دینے والے کا فیصلہ ہوتا ہے ریزلٹ والے دن. آخرت کیا ہے؟ یہ ڈے آف ججمنٹ ریزلٹ کا ڈے ہے, بس اس دن نتائج نکلنے. کوششیں اور محنتیں تو اس دنیا میں کرنی ہے. فیتھ ان ایکشن, پچھلی قوموں کے حالات سے سبق لینا. زندگی کو مہلت مانتے ہوئے آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے. تعلیم اور دعوت کے راستے میں پیش آنے والی تکلیفوں اور اذیتوں پر صبر کرنا ہے. اور اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے دے. تو سورت بہت ہی خوبصورت پیغام پہ پوری ہوئی. اگلی سورت الاحزاب کا کچھ حصہ ہے, اس میں پارے کے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ذرا سا سورت سجدہ اور احزاب کا ربط دیکھیے. سجدہ میں بھی ہم نے دو تین بار مومنین اور فاسقین کا تقابل دیکھا ہے, یعنی مومنین کا فاسقین کے ساتھ تقابل اور ان کے تذکرے ہیں. اس کے اپوزٹ اب سورت الاحزاب میں مخلص صحابہ اور منافقین کا کردار دکھے گا. زیادہ حصہ اس کا اگلے پارے میں آئے گا, لیکن بہرحال پوری سورت کو دیکھیں. 33 نمبر سورہ ہے, 73 آیات ہیں. سورت الاحزاب اس کو کہا جاتا ہے, خندق جنگ تھی اس میں بات تھی. ذرا سے اس سورت کا بھی دیکھ لیتے ہیں ایک مزاج. امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے, کفر اور منافقت کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام پہ عمل کرو, یہ ہے اس کا مین تھیم. اور آخری آیت بھی اس کی لفظ امانت سے متعلق ہے. اس کا نزول 5 ہجری میں ہوا, پچھلی سورت نبوی تھی, یہ ہجری ہے. غزوہ احزاب کے بعد سورت نور 6 ہجری میں ہوئی, لیکن مصحف میں پہلے ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو اکٹھا پڑھا کرو, کیونکہ وہ ترتیب میں پیچھے اور اس کے احکامات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتے. اللہ کے نبی پر منافقین کے اعتراضات ہیں, توکل کا مطالبہ ہے, اور منافقین کی اذیت رسانی ہے, اور بہت سارے معاشرتی احکامات ہیں جو کہ اگلے پارے 22 میں آئیں گے. کہہ سکتے ہیں کہ ادھر خواتین سے متعلق حجاب اور لباس سے متعلق حتمی حکم اس صورت میں آئے گا. اور اس صورت میں سے اگر آپ کو مین ایک چیز آج کے حالات کے مطابق پک کروں, تو آج کے دور کے دو پروپیگنڈے, وارز آف دی پروفٹ اینڈ وائفز آف دی پروفٹ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں کیوں لڑی اور اتنی بیویاں کیوں رکھیں, دونوں کا جواب آپ کو اس صورت میں دکھے گا. کل کے پارے سے پہلے تھوڑی سی باتیں مزید کروں گی راہ و رسم کی وجہ سے کہ معاشروں میں بگاڑ کب اور کیسے آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 8, احکام شریعت پر عمل کا حکم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. آپ نے نوٹ کیا, ڈائریکٹ خطاب. سورت نور یاد ہے, سورت انزلناها وفرضناها, بالکل دو ٹوک سٹائل ہے اس کا. یہ صورت بھی انہی صورتوں میں کہ جو آج بڑے لوگوں کو چپتی ہے, لیکن چپتی رہے, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ایک ایمان والا ہمیشہ حق بات کرے, چاہے لوگ اس سے خوش ہوں یا ناراض ہوں. اے نبی, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آ جانا. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے, اس کی تابع داری کریں. یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے. آپ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل رکھے, وہ کار سازی کے لیے کافی ہے. کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے. اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو, انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا, یعنی منہ بولا بیٹا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور نہ تمہارے لیے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا, یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجھاتا ہے. لے پالکوں, یعنی اڈاپٹڈ لکھ لیں انگلش میں اگر آسان لگتا ہے, لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ. اللہ کے نزدیک پورا انصاف بھی یہی ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو, تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے, اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں. البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو, اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے. پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے. اس جملے کو ہائی لائٹ کریں, آپ کے اور میرے اوپر سب سے زیادہ حق نبی کا ہے. میری اپنی جان کا بھی اتنا نہیں جتنا نبی کا ہے. یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے. اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, اسی لیے ان کو امہات المومنین کہتے ہیں. اور رشتے دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو, یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہے. جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا, اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے, اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا. اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں, 5 اولوالعزم پیغمبروں کا نام ہے اس میں. سب سے زیادہ جن کے اعلیٰ درجے ہیں وہ پانچوں ادھر ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے. اور کفار کے لیے ہم نے علمناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. एक आयत ईमान से मुतल्लिक अहज़ाब 6, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए इनकी जानों से बढ़कर हैं। कितने लोग हैं जो नबी के लिए जान दे सकते हैं? तो फिर आज नबी के फरमान, नबी की बात, नबी के हुक्म, नबी की बात, नबी के दिए हुए इस तोहफे कुरान की तरफ हमारे क्या ख्याल आते हैं? फेथ इन एक्शन, तमाम मुखालफतों के बावजूद इन्हें हक की तबलीग जारी रखनी है, इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना है, ले पालकों की वलदियत नहीं बदलनी। अडॉप्शन के मौजू पर यह अहम आयात है, अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन बच्चे का नाम नहीं बदल सकते, और जो पर्दे और हिजाब के मामला तो उसके बड़े होने पे होंगे वो भी उसी में आएंगे, मरने के बाद विरासत उसे मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीजों में इस्लाम का हुक्म लागू होगा। कभी भी किसी को अडॉप्ट करना चाहें तो पहले इस मौजू को अच्छी तरह समझ लें। आयत नंबर 9 से 20, रुकू नंबर 2 है, गज़वे अहज़ाब और ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान, खून को गर्म कर देने वाली ये आयतें हैं। गज़वे खंदक आज के दौर की वो जंग है कि सारे कुफार ने एका कर लिया है कि मुसलमानों को खत्म करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, आपको आपके रब ने पुकारा है, बहुत अरसे के बाद आपको एक पुकार मिली, जवाब दीजिए जी अल्लाह जी। क्या कहा? ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो एहसान तुम पर किया उसे याद करो, जबकि तुम्हारे मुकाबले को फौजों पर फौजें आईं, फिर हमने इन पर धुंधो तेज आंधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला सब कुछ देखता है, जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से और नीचे से चढ़ आए, और जबकि आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए, और तुम अल्लाह की बनिस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, यानी नौज बिल अल्लाह से भी बदगुमान हो गए, यही मोमिन आजमाए गए और पूरी तरह झंझोड़ दिए गए। और इस वक्त मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में शक का रोग था कहने लगे, अल्लाह ताला और इसके रसूल ने हमसे महज धोखे फरेब का ही वादा किया था। नौसुबिल्ला, बदगुमानी देखिए। इन्हीं की एक जमात ने हांक लगाई कि ऐ मदीना वालो, यहाँ यसरब का नाम आया, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, चलो लौट चलो। और इनकी एक जमात ये कहकर नबी से इजाजत मांगने लगी, हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो खुले हुए और गैर महफूज नहीं थे, लेकिन इनका पुख्ता इरादा भाग खड़े होने का था। मुनाफिक अक्सर घर का बहाना करके अल्लाह के रास्ते से भागता है। मदीने के अतराफ से इन पर लश्कर दाखिल किए जाते, फिर इनसे फितना तलब किया जाता तो ये जरूर इसे बर्पा कर देते और ना लड़ते मगर थोड़ी मुद्दत। इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि पीठ ना फेरेंगे, और अल्लाह तला से किए हुए वादे की बाज बरस होगी, यानी बार बार अल्लाह से वादे करके तोड़ देते हैं। कह दीजिए कि तुम मौत से या खौफे कत्ल से भागो, तो ये भागना तुम्हें कुछ भी काम ना आएगा। ये है हिजरत, एक हिजरत हम सब करने वाले हैं अनकरीब, और इस वक्त तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। पूछिए, अगर अल्लाह तुम्हें कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई फजल करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें बचा सके या तुमसे रोक सके? कहिए, कोई भी नहीं। अपने लिए सिवाय अल्लाह के ना कोई हिमायती पाएंगे ना मददगार, अल्लाह ताला तुम में से इन्हें बखूबी जानता है जो दूसरों को रोकते हैं। हमें नहीं पता कौन किसको रोकता है, लेकिन अल्लाह को पता। और अपने भाई बंदों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और कभी कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं, तुम्हारी मदद में पूरे बखील है। यकीन करें, इससे ज्यादा तनकीद मुनाफिकीन भी आपको कहीं नहीं दिखेगी अल्फाज के एतबार से। तुम्हारी मदद में पूरे बखील हैं, यानी मुनाफिक पैसा लगाते हुए कतराता है, जान निकलती है उसकी, फिर जब खौफ और दहशत का मौका आ जाए तो आप इन्हें देखेंगे कि आपकी तरफ नजरें जमा देते हैं, और इनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जैसे इस शख्स की जिस पर मौत की गशी हो, नहीं हमारी जबान में कहते हैं ना, मौत पड़ती है उसको अल्लाह के रास्ते में कुछ लगाते हुए। फिर जब खौफ जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज जुबानों से बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। अल्लाह अकबर, मान के बड़े ही हरीस हैं, कैसा तसव्वुर आ रहा है, अल्लाह में से किसी को ऐसा ना करे। ये ईमान लाए ही नहीं, अल्लाह ने इनके तमाम आमाल नाबूद कर दिए हैं, और अल्लाह ताला पर ये बहुत ही आसान है। समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं गए, इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि दुश्मन चला गया है, और अगर फौजें आ जाएं तो तमन्नाएं करते हैं कि काश वो सहरा में बादिया नशीनों के साथ होते, यानी देहातियों के साथ रहते, कि तुम्हारी खबरें दरियाफ्त किया करते, यानी घर बैठकर न्यूज चैनल से बस खबरें देखते कि गजा में क्या हो रहा है, बस हमें खबरों से अपडेट कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और अमल में किरदार वो है जो अल्लाह ने दिखा दिया है। अगर वो तुम में मौजूद होते तो भी क्या, ना लड़ते मगर बराए नाम, यानी शुक्र है ये नहीं गए। इनका खर्चा भी पलता है उम्मते मुस्लिमा पे, इनका घर रहना बेहतर है। याद करिए गजवे तबूक के मामले में भी आई थी ना आयतें कि कुछ लोगों का ना जाना ही बेहतर होता है। तो ईमान से मुतल्लिक 3 आयात हैं, अहज़ाब 9। अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की मदद अल्लाह के लश्करों से की जाती है, और अहज़ाब 11 अल्लाह मोमिन को आजमाइशों की भट्टी में डालकर कुंदन बना देता है, और 19 अहज़ाब जान और माल की मोहब्बत मुनाफ़क़त के असबाब में से एक सबब। फेथ इन एक्शन, किसी से बदहदी नहीं करनी, जाहरी नेकियों से इज्तनाब और हकीकी नेकियों की तरफ लपकना है, अपना माल औकात सलाहियतें दीन के रास्ते में खर्च करनी है, तन मन धन। आगे रुकू नंबर 3, 21 से 27। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी राहबरे कामिल। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नमाज के लिए सिर्फ नई, शादी ब्याह दुनियादारी जीना मरना जंग अमन, हर हर फील्ड ऑफ लाइफ में अल्लाह के नबी को फॉलो करो। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में बेहतरीन नमूना मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और कयामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला को याद करता है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल करे। और ईमानदारों ने जब कुफार के लश्करों को देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे कि इन्हीं का वादा में अल्लाह ने दिया और उसके रसूल ने दिया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया, और इस चीज ने इनके ईमान में और इनकी फरमाबरदारी में और इजाफा कर दिया। अल्लाह आज के हालात से हमारी नस्लों के दिलों में ईमान भर दे। मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह तला से किया था इन्हें सच्चा कर दिखाया। अल्लाह हमें खुद से किए हुए नेकियों के इरादे पूरे करने वाला बना दे। बास ने तो अपना अहद पूरा कर दिया और बास मौके के मुंतजिर हैं और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। अल्लाह में नेकियों की नियतें करके पीछे होने वालों में ना करे, ताकि अल्लाह ताला सच्चों को इनकी सच्चाई का बदला दे, और अगर चाहे तो मुनाफिकों को सजा दे या इनकी तौबा कबूल फरमाए। बेशक अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब देखिए, जब ईमान की ताकत होती है तो नसरों में अल्लाह कैसे होती है। आयत का नंबर नोट करें, अल्लाह ताला ने कुफार को गुस्से में भरे हुए ही नामुराद लौटा दिया। अल्लाह आज भी अपनी सुन्नत को वापस ला, उन्होंने कोई फायदा नहीं पाया, और इस जंग में अल्लाह ताला खुद ही मोमिनों को काफी हो गया। अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला गालिब है, अल्लाह आज के मोमिनों को भी काफी हो जा। और जिन अहले किताब ने इनसे सांस बास कर ली थी, इन्हें भी अल्लाह ने इनके कलों से निकाल दिया और इनके दिलों में भी रोह भर दिया। अल्लाह आज भी उनके दिलों में रोह भरते जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, कि तुम इनके एक गिरोह को कत्ल कर रहे हो और एक गिरोह को कैदी बना रहे हो, और इसने तुम्हें इनकी जमीनों को और इनके घरों को और इनके माल का वारिस कर दिया। अल्लाह सारे रिसोर्सेस इस्लाम पे लगे और इस्लाम वालों के अंदर ईमान की वो हरारत पैदा कर के उम्मत मुस्लिमा इन वादों की हकदार बन सके, और इस जमीन का भी जिसको तुम्हारे कदमों ने रौंद डाला। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह बैतुल मकदस को आजाद करा दे और हमें मरने से पहले वहां सजदा देने वालों में शामिल कर ले। 3 आयात ईमान से मुतल्लिक, 22, मुश्किलों में मोमिन का ईमान मुतजलजल नहीं होता, 23, मोमिन पुख्ता आजम वाला होता है, और 25, मोमिन के लिए अल्लाह काफी है। फेथ इन एक्शन का एक नुक्ता लिख लें जिसमें सब कुछ आ जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की पैरवी करनी है, हर हर मैदान में हर हर कदम पे। और अब पारे की आखिरी आयतें 28 से 30, अजवाजे मुतहरात का खसूसी मामला, यही मजमून अगले पारे में कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह कल। या युहन्नबी युकुल्ली अजवाजी का इन कुंतुन्न तुरिदनल हयात दुनिया, ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूं और तुम्हें अच्छाई के साथ रुखसत कर दूं। यहाँ लिख लीजिए, लाहुल हयात में खोने वालों को क्या पता कि नबी की बीवियों की जिंदगी कैसी थी और उनके घरानों में कैसे कुरान का नूर बरसता था। और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह और इसके रसूल और आखिरत का घर है, तो यकीन मानो कि तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ने बहुत जबरदस्त अजर रख छोड़े हैं। ऐ नबी की बीवियों, तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तकाब करेगी, इसे दोहरा दोहरा अजर दिया जाएगा, और अल्लाह के नजदीक ये बहुत ही सहल और आसान है। पारे का शुरू याद करिए, नमाज बेहयाई से रुकती है। पारे के एंड पे देखिए, औरतों को पैगाम दिया जा रहा है कि बेहयाई के जैसे काम नहीं करने, ऐसे हाल हुलिये में बाहर नहीं जाना कि जिससे लोग तुमसे टेम्प्ट हो। फेथ इन एक्शन, अल्लाह किसी बड़े ओहदे पे अगर आपको फाइज कर दे तो छोटी छोटी लफ्जों से भी बचना। नबी की बीवियां उम्मत की माएं थीं तो उनकी पकड़ भी जल्दी होती है। आज भी जो लोग दीन से मुंसलिक है किसी तौर पे, चाहे उनके घर में दर्स होता है, चाहे वो एडमिन है, चाहे वो उस्ताद है, उस्तादों की तो सख्ती आने वाली है क्यामत के दिन, क्योंकि जिनके रुतबे हैं सिवा इनकी मुश्किल है सिवा। अल्लाह ताला आपकी मेरी ईमान की ताकत को बढ़ा दे। ईमान की शाखों में आज 41 नंबर है। खिलाफ शरीयत खेल कूद से बचिए। लाहवल हयात दिया आपको लफ्ज, तो जिंदगी अल्लाह का बहुत बढ़ाती है, इसको जाया ना कीजिए। जिंदगी को असूल जवाबत के साथ बसर करना ही बंदगी है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी के मामलात में हकायक को सामने रख कर फितरत के मुताबिक जिए। जायज तफरी और खेल खेलना पसंदीदा है, जिसमें दौड़ लगाना, कुश्ती लड़ना, तीरंदाजी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, नजायज खेल वक्त का जिया है, ये हैं आपके टाइम किलर्स। ताश, जुआ, शतरंज, वक्त जाया करने वाले नावल पढ़ना, ड्रामे और फिल्में देखना, बाजारों के चक्कर लगाना। और लुकमान 6 में हम अभी पढ़ कर आए हैं, वमिन अन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। आज तो पैसों के साथ खरीदते, आपके घर का सबसे ज्यादा बिल इन्हीं चीजों के देखने दिखाने पे आते हैं, सबसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अल्लाह हमारे वक्त का सही इस्तेमाल कराए। तिर्मिजी की रिवायत अब्दुलरहमान बिन साबित से, आपने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के कुछ लोग जमीन में दब जाएंगे, खसफ कहते हैं इसको, शक्लें बदल जाएंगी, आसमान से पत्थरों की बारिश का नजूल होगा। फरमाया क्या वो कलमा गो होंगे? फरमाया हाँ, जब गाने बजाने और शराब आम हो जाएगी और रेशम पहना जाएगा। आपने देखा पूरा पारा एक लड़ी में भरा हुआ। फ्लोरिडा में क्या होता है कुछ सालों के बाद? सिंक होती है, सिंक होल्स। कैलिफोर्निया खतरे पे, और जो वहां हो रहा है इस वक्त ये तो किसी वक्त ये वादा पूरा होने वाला है। अल्लाह उनको भी बचाए, वहां के मुसलमानों की भी हिफाजत करे, और जो वहां ईमान पे नहीं उनको अल्लाह ईमान अता फरमा दे। इसी तरह से अगली शाख जो आखिरी पॉइंट है महाराज का, वो क्या है? 42 नंबर, खर्च में मियाना रवि इख्तियार करें, क्योंकि ये फजूल खर्चियां ही असल में लाहौल हदीस पे लेके जाती हैं। हम मुसलमान बेहतरीन उम्मत हैं, उम्मत वसत एक मोतदिल उम्मत होती है, अदल और मियाना रवि वाली उम्मत है। इसलिए हमें हुक्म दिया गया कि मॉडरेट रहिए, ना फजूल खर्च ना कंजूस, क्योंकि बुखल और कंजूसी भी नापसंदीदा, और फजूल खर्चियां और पैसे का जाया करना भी। सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सूरह बनी इसराइल 26:7 में हम पढ़ चुके कि फजूल खर्च शैतान के दोस्त हैं या शैतान के भाई हैं। और सही मुस्लिम की रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चंद दिनार जो तो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है, वो कैसे? एक दिनार अल्लाह के रास्ते में, एक वो जो तूने किसी को गुलाम को आजाद करने के लिए खर्च किया, एक जो किसी मिस्कीन पर खर्च किया, और एक जो अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया। इसमें सबसे ज्यादा अजर है अहलो याल पर खर्च का। ये है शोहर बीवी और फैमिली बॉन्ड का इस्लाम का नुक्ता नजर। और आखिरी शेर जो आज के पारे के साथ, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। ये आज के एजुकेशनल सेटअप पे तनकीद है, मुझे है हुक्म अज़ा। बड़ी मेहनत करके माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं उनको अल्लाह से दूर करने का। इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ये हवेलियां जो कहाँ का नाम लूं, मुंह पे कुछ आने लगा था, छोड़ रही हूँ। बैक होम भी घर बनाते हैं और इधर भी घर चाहिए। अल्लाह कहते ये फितने बन जाएंगे, ये औलादें भी फितने, ये जागीरियां जो मिली हैं, बड़ी बड़े ओहदे मिले हैं, ये सब फितने हैं। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज की दुआ, अल्लाहुम्म तखिर कल्बी मिन निफाक व मली मिन रिया व लिसानी मिन अलकज़िबी व आई मिन अलखियानति फइन्नक तअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फि सुदूर। अल्लाह मेरे दिल को निफाक से, मेरे अमल को रिया और नमूद से, मेरी जुबान को झूठ से, और मेरी आंख को खयानत से पाक कर दे। बेशक तो आंखों की खयानत और सीनों के छुपे हुए राज जानता है। अल्लाह मेरी आंखों को लाहवल हदीस देखने से रोके, गंदी चीजें देखने सुनने पढ़ने से रोके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।